यही पैगाम आगे सूरत कलम का है। आइए देखते हैं, 52 आयात है, छोटी छोटी आयतें हैं। इंट्रोडक्शन में बात हो गई कि ईमान बिर रिसाला नबी सल्लम की जात है, और इसमें वो आयत भी है जो हम पूरा रमदान पढ़ते रहे, सुनते रहे दौरे कुरान के दौरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नून वल कलमी वमा यस्तुरून, मान तबी नेमती रब्बी कभी मजनून। नून कसम है कलम की और इसकी, जो जो कुछ के वो फरिश्ते लिखते हैं। तू अपने रब के फजल से दीवाना नहीं है, और बेशक तेरे लिए बेइंतहा अजर है, और बेशक तू बहुत बड़े उम्दा अखलाक पर है। इसको हाईलाइट कीजिए, वइन्नका लअला खुलुकिन अजीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से सूरत शुरू होती है, कलम का तस्करा है। पहली चीज जो अल्लाह ने पैदा की थी वो कलम थी, फिर उसको का उक्तुब लिख, और वो लोगों की तकदीरें लिखता गया। आज आपका मेरा इस कलम के साथ क्या ताल्लुक है? और नबी ने कलम पकड़ना दिखाया। वो कहते हैं ना, ये जो कलम है ये उस्ताद की अता है। एक बड़ी मशहूर पोएम अक्सर ही कहीं ना कहीं से आ जाती है कि उस्तादों की कदर कीजिए कि जो आपको कलम पकड़ना सिखाते हैं। कलम से मोहब्बत कीजिए, लिखते हैं ना तो फोकस भी हो जाता है। और नबी के अखलाक की गवाहियां पूरे दौरे कुरान में दी गई। इंशाल्लाह हम दौरे कुरान के बाद आपको टाइम अनाउंस करके बताएंगे कि हम अखलाक के नबी की सीरीज को रमजान के एंड तक चलाएंगे, और मोहम्मद अरबी भी चलेगा। पूरी सीरत और साथ नबी का अखलाक। क्या पढ़ते सुनते वक्त हम अपना मुहासबा नहीं कर रहे होते? मैं होती अल्लाह के नबी की जगह तो कैसे करती? मेरा अपने बच्चों से क्या मामला है? मेरा अपने साथियों के साथ क्या ताल्लुक है? तो यही सीखने का बेहतरीन तरीका होता है कि मिसालों से तज़किया हो और इंसान उसको अपनी ज़िंदगी में ले आए। नबी से बहुत ही मुखालफत रखते थे, मुख्तलिफ तरीकों से अल्लाह के नबी को मिशन से हटाते थे, जो कि हम पढ़ ही रहे हैं अभी बातें, तो उसी का तस्करा है। फसत उबसिर वयुबसिरून बिअय्युकुमुल, बस अब तू भी देख लेगा और ये भी देख लेंगे कि तुम में से कौन फितने में पड़ा हुआ है। बेशक तेरा रब अपनी राह से भटकने वालों को खूब जानता है, और वो राह याफ्ता लोगों को भी बखूबी जानता है। बस तू झुटलाने वालों की बात ना मान, क्योंकि हाईलाइट कीजिएगा, वद्दू लौ तुदखिनु फयुदखिनून, वो तो चाहते हैं कि तू जरा ढीला हो तो ये भी ढीले पड़ जाए। दुनिया में ये असूल है, लोग आपको ढीला करना चाहते हैं, थोड़ा सा आप उनके लिए हो जाएं, बाकी वो आपको खुद कर लेंगे। तो ना घर वालों के लिए, ना बच्चों के लिए, ना दोस्त अखबाब के लिए, किसी के लिए कभी दीन के किसी मामले से पीछे ना हटिए। वला तुती कुल्ला हल्लाफ महीन, तू किसी ऐसे शख्स का भी कहना ना मान जो ज्यादा कस्में खाने वाला, बेवकार, कमीना, ऐब गो, चुगलखोर, भलाई से रोकने वाला, हद से बढ़ जाने वाला, गुनागार, गर्दन कश, फिर साथ ही बेनसब हो। ये किरदार है, आप पढ़ेंगे, नबी की दुश्मनी की खातिर ये शख्स आया था और अल्लाह ने उसके नाम पे के पोल खोल दिए। तो याद रखिए, नबी की तौहीन करके लोग वापस नहीं बचेंगे। अल्लाह ने उनको दुनिया में भी रुसवा किया, और आखिरत में जो मामला होगा वो तो अल्लाह जानता है। इसकी सरकशी सिर्फ इसलिए है कि वो माल वाला और बेटों वाला है। जब इसके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो कह देता है ये तो अगलों के किस्से हैं, हम भी इसकी सूंड यानी नाक पर दाग देंगे। ये नहीं, झूठी इज्जत की जो बात करता था ना दीन के नाम पे, हम इसको खत्म करेंगे। आगे एक वाक़या है जिससे दुनिया की हकीकत समझ आती है। अफसोस है कि उम्मत मुस्लिमा के लिए भी यही पेशन गोई थी कि एक वक्त आएगा कि मेरी उम्मत दुनिया के माल दौलत में इतना खो जाएगी कि वो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को छोड़ देगी, दावत इल्लाह का काम छोड़ेगी। तो इस किस्से को पढ़ते वक्त अपना मुहासबा करें कि क्या मैं भी हर वक्त 999, 999 और 1000 के चक्कर में तो नहीं रहती, और सिर्फ अपनी चीज़ों का एक्सपोजर और उसी को शो ऑफ करने में तो मैं नहीं लगी रहती क्या? बेशक हमने इन्हें इसी तरह आजमा लिया जिस तरह हमने बाग वालों को आजमाया था, जबकि उन्होंने कसमें खाई कि सुबह होते ही इस बाग के फल उतार लेंगे, और इंशाल्लाह ना कहा। बस इस पर तेरे रब की जानिब से एक बला चारों तरफ घूम गई और ये सो रहे थे, फिर क्या हुआ? फसबहत का सरीम, बस वो बाग ऐसा हो गया जैसे कटी हुई खेती। फतना दो मुसबहीन, फिर सुबह होते ही उन्होंने एक दूसरे को आवाजें दी कि अगर तुम्हें फल उतारने हैं तो अपनी खेती पर सुबह सवेरे ही चल पड़ो। फिर ये सब चुपके चुपके ये बातें करते हुए चले कि आज के दिन कोई मिस्कीन तुम्हारे पास ना आ पाए, और लपके हुए सुबह सुबह गए, समझ रहे थे कि हम काबू पा गए। जब उन्होंने बाग देखा तो कहने लगे यकीनन हम रास्ता भूल गए, यानी वहां तो बाग था ही नहीं, सारा जल चुका था। नहीं नहीं बल्कि हमारी किस्मत फूट गई, इन सब में से जो बेहतर था इसने कहा। मैं तुमसे न कहता था कि तुम अल्लाह की पाकीज़गी क्यों बयान नहीं करते? قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين. تو سب کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے. فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون، پھر ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں ملامت کرنے لگے، کہنے لگے ہائے افسوس، یقیناً ہم سرکش تھے، کیا عجب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے، ہم تو اب اپنے رب سے ہی آرزو رکھتے ہیں. یوں ہی عذاب آتا ہے اور آخرت کی آفت بہت بڑی ہے، کاش انہیں سمجھ ہوتی. کیا پتہ چلا کہ وہ دنیا کی چیزیں جس کے بنانے میں، سجانے میں، کھپانے میں ایک انسان لگا رہتا ہے، ایک قیامت کی آگ آئے گی اور انسان کا سب راکھ ہو جائے گا یا موت آ جائے گی. تو مقصد کیا ہے کہ اپنی دنیا کو کم کرتے کرتے اپنی آخرت کو بڑھائیے تاکہ اس میں ملے. اب اسی کا تذکرہ ہے جنت کی آیتیں، ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں. کیا ہم مسلمانوں کو مثل گناہگاروں کے کر دیں گے؟ افنجل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ اس میں تمہاری من مانی باتیں ہوں گی؟ یا تم سے ہم نے کچھ قسمیں لی ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گی کہ تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم اپنی طرف سے مقرر کر لو؟ ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار ہے اور کون دعوے دار ہے. کیا ان کے پاس شریک ہیں تو چاہیے کہ اپنے اپنے شریکوں کو لے آئیں؟ ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں، نہیں کوئی ہے ہی نہیں. یوم یکشف عن ساق، قیامت کا منظر ذہن میں لائیے، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے. دنیا میں جن کو سجدے مشکل لگتے ہیں، جن کو نمازیں بوجھل لگتی ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ اس میں حال کیا ہوگا؟ خاشیت ابصارہم ترہقہم ذلہ، نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت و خواری چھا رہی ہوگی. حالانکہ پیچھے حال کیا تھا؟ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، حالانکہ یہ سجدے کے لیے اس وقت بھی بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح سلامت تھے. بار بار اذانیں ہوتی تھی، 5 دفعہ دن میں پکارا جاتا تھا حیّ علی الصلاۃ حیّ علی الفلاح، لیکن یہ نہیں آتے تھے. اللہ جب نزول فرمائے گا میدان حشر میں تو اس کے جلال اور اس کے کمال کو دیکھ کر ہر ایک جھکنا چاہے گا. جیسے کسی بھی باعزت شخص کو آتا دیکھ کر ایک دم لوگ کھڑے ہو جاتے اور جی 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 کرنے لگ جاتے، اللہ کے لیے تو کوئی مثال نہیں. اس دن وہ سارے بھی جو اللہ کو پہچانتے تھے کہ نہیں، مانتے تھے کہ نہیں، وہ بھی جھکنا چاہیں گے، لیکن جو دنیا میں نہ جھکے ان کی کمریں تختے کی کر دی جائیں گی. زندگی میں جھک کر نماز پڑھیے، اللہ آخری دم تک ہمیں بیٹھ کر سجدہ کر کے زمین پہ سجدہ کرنے کی توفیق دے. جتنا نماز کھڑے ہو کر پورے ارکان کے ساتھ ادا کریں گے جسم فلیکسیبل رہے گا. بوڑھے لوگ جو مسلمانوں کے ہوتے ہیں ان کے آخری زندگی تک بھی جسم کے اعضاء کام کرتے ہیں. اس کے برعکس دیکھا گیا ہے کہ نان مسلم جو کہ اپنی زندگی میں شاید سجدہ نہیں کرتے تو 70-80 کے بعد ان کی باڈی سٹف ہو جاتی ہے، وہ جھک نہیں سکتے. تو یہ جو سجدہ ہے نا، یہ ہمارے اپنے فائدے کی چیز ہے. کیا ہوا؟ فزرنی ومن یکذب بهذا الحدیث، بس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والے کو چھوڑ دے، ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا، یعنی اللہ کی پکڑ کا انداز، اور انہیں میں ڈھیل دوں گا، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. کیا تو ان میں سے ان سے کوئی اجرت چاہتا ہے جس کے تاوان سے یہ دبے جاتے ہوں؟ یا کہ ان کے پاس علم غیب ہے جس سے وہ لکھتے ہوں؟ فاصبر لحکم ربک، بس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا، یعنی یونس علیہ السلام، جبکہ اس نے غم کی حالت میں دعا کی. اگر اسے اس کے رب کی نعمت نہ پا لیتی تو یقیناً وہ برے حالوں میں چٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا. اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیکوکاروں میں کر دیا، اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں جب کبھی قرآن سنتے اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ضرور دیوانہ ہے. حالانکہ خوبصورت آیت آپ نے اس قرآن کو محبت سے دیکھتے ہوئے سنیے، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ، در حقیقت یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے. آپ نوٹ کیجئے، ہر سورت کے اینڈ پہ اور اس کے قریب قرآن کا تذکرہ ہے. تو یہ قرآن جو آپ اور میں پڑھیں، یہ نصیحت ہے. کیا آپ کو اس کو پڑھنے کے دوران فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ رب کا کلام اپنے بندوں کے نام ہے؟ تو الحمدللہ آپ کو آن لائن کورسز اناؤنس کیے گئے جو آپ سب کے لیے ورلڈ وائڈ ہے. اپنے اپنے ٹائم کو حساب میں رکھتے ہوئے اس کو سائن اپ کریں. لیکن تحدیث نعمت اور آپ کی یادداشت کے لیے آپ سب کو بھی دعوت دوں گی، हमारे पास अभी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां आप अपनी बच्चियों को या आप खुद भी जाकर ऑन साइट पे रहकर 1 साल में सबील उल जन्नत कोर्स करना चाहें तो आज हम उसका आपके सामने तस्करा रखते हैं। ये जोहराबाद के कैंपस में हमारा वो कोर्स है जो मंडे 12 मई से शुरू हो रहा है और ये 1 साल में पूरा था। जो आप ऑनलाइन पे साइन अप कर रहे हैं ना, वो सिर्फ 3 दिन है हफ्ते में क्लास, क्योंकि खवातीन है, आप घर से करते हैं, इजी फील करते हैं ना, 2.25 साल में पूरा होता है। जाहिर है थोड़े दिन है, टाइम भी उसका बहुत थोड़ा होता है, सिर्फ 3 सवा 3 घंटे होता है। ये कोर्स बच्चियों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी यहाँ कुछ बच्चियाँ हैं जिनको आप 1 साल के लिए ब्रेक दिलवाना चाहते हैं यहाँ के पढ़ने लिखने वाली चीज़ों से, तो आप उनको इसमें एडमिट कराएं। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है यूट्यूब से, आप इसको बाद में लें। इसके ऊपर आपको एक QR कोड भी दिख रहा है कोने में, इसको खोलेंगे तो वो पेज खुल जाएगा। ठीक है, तो ये ऑन साइट जाकर हॉस्टल में रह के कर सकते हैं आप लोग, और जो लोकल लोग हैं उन सबको भी दावत दूंगी कि अल्लाह ने जोहराबाद को क्यों चुना। आपके इर्द गिर्द चारों तरफ क्या कुछ है, लेकिन अल्लाह ने इस छोटी सी बस्ती को क्यों चुना, आप इसका हक अदा करते हुए हर घर जोहराबाद का और खुशाब का हर घर ऐसा हो कि जिसकी औरतें बेटियां बच्चियां ये सबीलुल जन्ना कोर्स करें। तो बिस्मिल्लाह करके इसको साइन अप कीजिए और आप फिर खुद ही देखेंगे कि उसमें क्या होता है। अल्लाह ताला आपसे मुझसे राजी हो जाए। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पहला रुक भी पूरा हुआ, आयत 52 पे बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह ही अला नेमतिल कुरान, तदब्बुर और अमल पूरी सूरत पे। अल्लाह ताला से अच्छे अखलाक की दुआ मांगे और अल्लाहुम्मा हदिनी लि अहसनिल अखलाक। 2 रकत नमाज ऐसे पढ़िए कि इसमें लंबे सजदे करें और अल्लाह के कुर्ब को महसूस करें। दुआ कीजिए ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, क्योंकि इस सूरत में हज़रत यूनुस का दोबारा तذکرہ आया कि उनके इस दुआ की वजह से अल्लाह ने उनको मछली के पेट से निकाल दिया। अल्लाह ताला आप सबको भी आजमाइशों से निकाल दे और आफियत में रखे। रहनुमाई, अपने गुनाह का इतराफ करके तौबा की तरफ माइल होना निजात की पहली सीढ़ी है। करिए शऊर से तौबा। अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। गुनाह की जिंदगी के साथ खुशहाली और दर हकीकत बदहाली की शुरुआत है। यानी कि गुनाह भी कर रहा है और फिर भी उसके ऊपर दुनिया खुली हुई है, तो गोया के उसके साथ बुरे हाल शुरू हो रहे हैं, ये एक किस्म की खबर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती के तौर पर हमें अपने अखलाक को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है, खास तौर पे दूसरों को इस्लाम की तरफ माइल करने के लिए। गौर व फिक्र की बातें, कलम की अहमियत की बदौलत इसकी कसम खाई गई, इसी से कुरान पाक और दूसरी किताबें लिखी गईं। सोहबत अखलाक पर असरअंदाज होती है, इसलिए अहले मासियत यानी गुनाहगारों से मेल जोल में एहतियात बरतनी चाहिए। झूठा शख्स अपनी झूठी कस्मों के जरिए बचने की कोशिश करता है और इन्हें बेवक्त और हर जगह इस्तेमाल करता है। रोज़े क़यामत सिर्फ मोमिनीन अल्लाह के सामने सजदा कर सकेंगे, काफिर और मुनाफिकीन ये इस्तेआत न रखेंगे, इनकी पुश्त तख्ते की हो जाएगी। अल्लाह हमें दुनिया और आखरत की रसवाई से बचा दे। और इसी तरह नेमतें मिलना और शुक्र को भूल जाना, हर गुनाह के बाद एक नई नेमत मिलना और इस्तग़फ़ार का भूल जाना, आंखों का जमूद और दिल का सख्त हो जाना, ये अल्लाह का कानून है, इस्तदराज है। इस्तदराज क्या है, ये देखिए दर्जा दर्जा दर्जा, ये महाल भी कहते हैं, मोहलत देना, यानी अल्लाह किसी को एकदम नहीं पकड़ता। दौलत भी हो नेमत भी है, अल्लाह ने हर नेमत दी लेकिन वो अल्लाह से दूर ही दूर है, तो गोया के फिर अल्लाह ताला उसको आहिस्ता आहिस्ता पकड़ता है। सिर्फ अपने लिए समझिए कि आप किसी जानवर को पकड़ना चाहें तो एकदम तो नहीं पकड़ते ना, तो जाल लगाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके पास जाता जाता है, और अखीर जब उसकी रेंज में आ जाए तो उसको पकड़ लिया जाता है। अगले पारे में हम पढ़ेंगे इन्ना रब्बक लबिल मिरसाद, तुम्हारा रब तुम्हारी खाद लगाए हुए है। तो अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह की तौफीक दे। आगे जी सूरत अल खाका, इसकी भी 52 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलहाकतुम अलहाक वमा अदराकुम अलहाका। क़यामत के नामों में से एक नाम और नोट करते जाइए। साबित होने वाली, साबित होने वाली क्या है तुझे, और तुझे क्या मालूम कि वो साबित शुदा क्या है। इस खड़का देने वाली को समूद और आत ने झुटलाया था, जिसके नतीजे में समूद तो बेहद खौफनाक और ऊंची आवाज से हलाक कर दिए गए और आत बेहद तुंदो तेज हवा से गारत कर दिए गए। जिसे इन पर 7 रात और 8 दिन तक अल्लाह ने मुसल्लत कर रखा। बस तुम देखते हैं कि ये लोग जमीन पर इस तरह गिर गए जैसे खजूर के खोखले तने हों। क्या इनमें से कोई भी तुझे बाकी नजर आ रहा है? फिरौन और इससे पहले के लोग और जिनकी बस्तियां उलट दी गईं, उन्होंने भी खताएं की और अपने रब के रसूल की नाफरमानी की। बोलिए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन। बिलाखिर अल्लाह ने इन्हें भी जबरदस्त गिरफ्त में ले लिया। जब पानी में तुगयानी आ गई, यहाँ किस कौम का तस्कर है? हजरत नूह अलैहि सलाम का। जब पानी में तुगयानी आ गई तो इस वक्त हमने तुम्हें कश्ती में चढ़ा लिया ताकि इसे तुम्हारे लिए नसीहत और यादगार बना दें और ताकि याद रखने वाले कान इसे याद रखें। अब वो छोटी सी क़यामत थी जो कौम नूह पर आई, उसी से एक बड़ी क़यामत को ज़हन में ले आओ। फ़ैज़ा नुफ़िख़ा फ़िस्सूर नफ़खतुन वाहिदा। बस जब सूर में एक फूंक मारी जाएगी और जमीन और पहाड़ उठा लिए जाएंगे और एक ही चोट में रेजा रेजा कर दिए जाएंगे। फयौमैज़िन वक़ायतिल वाक़िया, और उस दिन हो पड़ने वाली क़यामत हो पड़ेगी और आसमान फट जाएगा और इस दिन बिल्कुल बोदा यानी सुस्त हो जाएगा। इसके किनारों पर फरिश्ते होंगे और तेरे परवरदिगार का अर्श उस दिन 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। यौमैज़िन तुरदून अला तख्फा मिनकुम खाफिया, जिस दिन तुम सब सामने पेश किए जाओगे तुम्हारा कोई भेद पोशीदा न रहेगा। तो जिसका नाम है अमाल इसके दाएँ हाथ में दिया जाएगा तो वो कहने लगेगा, लो मेरा अमाल नामा पढ़ लो, मुझे तो कामिल यकीन था कि मुझे अपने हिसाब से मिलना है या मुझे अपना हिसाब मिलना है। बस वो एक दिलपसंद जिंदगी में होगा, बुलंद बाला जन्नत में, जिसके मेवे झुके पड़े होंगे। और क्या कहा जाएगा? दुआ करिए हमारे कानों को ये पुकार मिले, कुलू वशरबू हनी अम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। इनसे कहा जाएगा, मजे से खाओ पियो अपने इन अमाल के बदले जो तुमने गुज़श्ता ज़माने में किए। लेकिन जिसे इसके अमाल की किताब इसके बाएं हाथ में दी जाएगी, वो तो कहेगा कि काश मुझे मेरी किताब दी ही ना जाती। इस रिग्रेट को फील कीजिए। फेल होने वाला स्टूडेंट कहता है, काश पेपर ही गुम जाता, जंग लग जाती और हमारे रिजल्ट ना आते। या लैतनी लम ऊता किताबिया, क्या ये इंजाम चाहता है इंसान? भला मदरी माँ हिसाबिया, और ना मैं जानता कि मेरा हिसाब क्या है। या लैताहा कानत अल-क़ादिया, काश के मौत मेरा काम ही तमाम कर देती। ये हसरत, ये रिग्रेट, ये अच्छा है, ये दुनिया में अल्लाह की तरफ पलटना अच्छा है। माग़नानी मालिया, मेरे माल ने भी मुझे कुछ नफ़ा ना दिया। हलकानी सुल्तानिया, मेरा गलबा भी मुझसे जाता रहा। सिर्फ रिग्रेट है, अफसोस। क्या उसकी ये बातें कबूल कर ली जाएंगी? नहीं, बल्कि खुजू फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू, हुक्म होगा इसे पकड़ लो और फिर इसे तौक पे ना दो, फिर इसे दोजख में डाल दो, फिर इसे ऐसी जंजीरों में जिसकी पैमाइश 70 हाथ है जकड़ दो। बेशक ये अल्लाह अजमत वाले पर ईमान न रखता था और मिस्कीन के खिलाने पर रग़बत न दिलाता था, बस आज इसका ना कोई दोस्त है और ना कोई गिज़ा सिवाय पीप के। आज के मशरूबात खाने पीने और उधर पीप, कौन खाएगा इसको? ला याकुलुहु इल्लल खातियून, जिसे गुनाहगारों के सिवा कोई ना खाएगा। लफ्ज़ खातियून है, मिस्टेकर्स। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह गलती से भी गलती ना करवाए, अल्लाह बुरे अंजाम से बचाए। फला उक्सिमु बिमा तुबसिरून वमा ला तुबसिरून, बस मुझे कसम है इन चीज़ों की जिन्हें तुम देखते हो और इन चीज़ों की जिन्हें तुम नहीं देखते, कि बेशक ये कुरान बुजुर्ग रसूल का कौल है। वमा हुआ बिकौली शायरिन कलीलम मा तुमिनून, ये किसी शायर का कौल नहीं, अफसोस तुम्हें बहुत कम यकीन है, और न किसी काहिन का कौल है, अफसोस बहुत कम नसीहत ले रहे हो। फिर ये क्या है? हाईलाइट करके देखें, फिर कुरान की बात आ गई। तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये तो रब्बुल आलमीन का उतारा हुआ है, और अगर ये हम पर कोई बात बना लेता तो अलबत्ता हम इसका दायां हाथ पकड़ लेते, फिर इसकी शहरग काट देते, फिर तुम में से कोई भी इसे रोकने वाला ना होता। वा इन्नहु लतज़किरतुल लिल मुत्तकीन, यकीन है ये कुरान परहेजगारों के लिए नसीहत है। नोट कीजिए, है तो सबके लिए लेकिन फायदा उठाएंगे मुत्तकी। और मुत्तकी कौन होता है? एक जुमले में लिख लीजिए, जिसको अपनी गलतियां चुभने लगे, जो अपने आप को बदलना चाहे, जो अपने गुनाहों को नेकियों में बदलने के लिए बेचैन हो, जो कुरान सीखने के लिए बेचैन हो जाए, उसी को इससे नसीहत मिलेगी। हमें पूरी तरह मालूम है कि तुम में से बाज़ इसके झुटलाने वाले हैं। बेशक ये झुटलाना कुफार पर हसरत है, और बेशक को शुबा ये यकीनी हक है। बस तो अपने रब अजीम की पाकी बयान कर। आप करेंगे बयान? सुभान अल्लाह की व बिहम्दी ही सुभान अल्लाह हिल अजीम। चलिए तदब्बुर करते हैं पूरी सूरत पे और अमल के नुक्ते। हाजतमंदों को खुद भी खाना खिलाना है और दूसरों को भी इसकी रग़बत दिलानी है। अल्लाह से दुआ करें कि हमारा अमाल नामा हमें दाएं हाथ में मिले। ये दुआ मांगिए, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका नकूला ज़ूरम औ अक्षा फुजूरन। अल्लाह मैं झूठ बोलने या बेहयाई में मुलव्वस होने से तेरी पनाह चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल रमज़ान में हम जोहराबाद इंस्टीट्यूट के और बाकी भी पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट, इवन इंडिया में भी कुछ जगहों पे राशन बांटते हैं, तो उसमें ये होता है कि मुस्तहकीन तक पहुँच जाता है, गुरबा मसाकीन और उस पर। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल चूँकि मस्जिद भी है तो और भी डिस्ट्रीब्यूशन आसान है। पहले रमज़ान से लेके आज तक एवरी डे सहरी पे खाना बनता है और गुरबा लेकर जाते हैं। उसकी वीडियोज़ एवरी डे आती हैं, पता नहीं किसी चैनल पर हैं कि नहीं, लेकिन जब भी किसी को भी देना तो जहन में ये भी रखिए कि वो उस खाने से बाद में क्या करता है। बस वह बेनमाजी, बेरोज़ों को, या फिर ऐसे लोग जिनके पहले ही बहुत और मांगने की आदत है, इंसान देता है तो हमेशा देने से पहले किसी भी प्रोजेक्ट में हिस्सा डालें तो ये देखा करें कि आपका दिया हुआ मल्टीप्लाई कहाँ हो रहा है। क्योंकि अक्लमंदी भी यही होती है कि इंसान अपने पैसे को सोचकर अच्छे तरीके से इस्तेमाल करे। फिर इसके बाद कुरान से रहनुमाई, अपनी तन्हाइयों को भी गुनाहों से पाक करना है, क्योंकि अल्लाह से कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है। कुरान का हर हुक्म इंसान की भलाई के लिए है, इसके किसी भी हिस्से को नज़रअंदाज करके खुद को खसारे में नहीं डालना। नसीहत लेने के लिए दौड़ना होता है, नसीहत से दूर नहीं दौड़ना। सवाल कीजिए खुद से, मैं नसीहत की तरफ दौड़ती हूँ या नसीहत से दूर भागती हूँ? अक्सर लोगों को नसीहत अच्छी नहीं लगती, तो ये गौर व फिक्र का लम्हा है। कान को वाइया याद रखने वाला कहा गया है, क्योंकि कान दिल का दरवाजा है और इस तक इल्म को पहुंचाने वाला, यानी इस वक्त भी कहाँ से सुन रहे हैं हम? कानों से सुन रहे हैं ना, तो कान एक रिसेप्टर है जिससे बात दिल तक जाती है और फिर अमल में ढलती है। अमल साले करने वाले को भी इसका अमल अल्लाह की रहमत और फजल से ही फायदा देगा। सआदत दो चीज़ों से है, अल्लाह पर ईमान लाना और मखलूक के साथ अच्छा बर्ताव करना। गौर से सुनने वाला इल्म की गहराई को महसूस भी करता है और महफूज भी करता है। अल्लाह हमें गौर से सुनने वालों में शामिल कर दे। आगे सूरत मारिज 44 आयात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़िलिल काफिरीन लैस लहू दाफ़े मिनल्लाहि ज़िल मआरिज। एक सवाल करने वाले ने इस अज़ाब का सवाल किया जो वाज़े होने वाला है, कुफार पर जिसे कोई हटाने वाला नहीं, इस अल्लाह की तरफ से जो सीढ़ियों वाला है जिसकी तरफ फरिश्ते रुख चढ़ते हैं, एक दिन में जिसकी मिकदार 50,000 साल की है। बस तो अच्छी तरह सब्र कर, सब्रन जमीला। इसको हाईलाइट करें। हज़रत यूसुफ का सब्र जमील था, हज़रत यूनुस का, हज़रत यूसुफ का, हज़रत याकूब, सारे अम्बिया के सब्र सब्र जमील थे, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अस्हाब रसूल का सब्र तो हकीकत में सब्र जमील था कि जिसमें ला शिक व तफीहा। जब आप अल्लाह के लिए सब्र करते हैं ना, तो फिर लोगों को ना अपने दुख सुनाया करें, लोगों के सामने गिले शिकवे और मुश्किलात का तذکرہ ना करें, हाय ये हाय वो। फसब्रन जमीला, बस तो अच्छी तरह सब्र कर। बेशक ये इस अजाब को दूर समझ रहे हैं और हम इसे करीब देखते हैं। क्या होगा जरा क़यामत को ज़हन में लाइए। यौम तकूनु सम्मा कल मोहल, जिस दिन आसमान मिसल तेल की तल छटके हो जाएगा। पकौड़े, समोसे, कचौरियाँ फ्राई करने के बाद एंड पे तेल के अंदर जो नीचे कालक होती है ना, लेसदार, उसको ज़हन में लाइए। क्या हाल होगा आसमान का, जैसे चीज मेल्ट होती है ना, ये आसमान पूरा मेल्ट हो जाएगा। अल्लाह अकबर। वतकून अलजिबालु कल इहन, और पहाड़ मिसल रंगीन ऊन के हो जाएंगे। ये तो थी बड़ी बड़ी चीजें कायनात की, उनका ये हाल है, तो सोचिए एक 5-6 फुट के इंसान के साथ क्या होगा। कभी गाड़ी पूरी पिचक जाए तो कहते हैं बताओ जो अंदर थे उनका क्या हुआ, कहते हैं उनका तो कुछ ना पूछो, उनकी तो डेड बॉडी थी पहचानी जा रही। तो क़यामत का धमाका एक बहुत बड़ा हादसा है, और इंसान का हाल क्या होगा, इसको हाईलाइट करिए और अपनी दोस्तियों के रुख भी देखिएगा। वला यसलु हमीमुन हमीमा, और कोई दोस्त किसी दोस्त को ना पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? इसलिए कि हर एक को अपनी पड़ी होगी, हालांकि एक दूसरे को दिखा दिए जाएंगे। गुनाहगार लोग उस दिन के अजाब के बदले फिदिये में अपने बेटों को, अपनी बीवी को और अपने भाई को और अपने कुंबे को जैसे बना देता था, रोए जमीन के सब लोगों को देना चाहेगा ताकि ये से निजात दिला दे। लाइए जरा अपने रिश्तों को निगाहों में और आयत को सुनिए। यवद्दुल मुजरिमु लव यफ्तदी मिन अज़ाबी यौम इज़िम भी बनी। बेटों को जहन में लाइए। वह साहेबती ही व अखी, बीवी शौहर भाई, व फसीलती हिल्लती तू भी कुंबा बिरादरी, व मन फिलर दी जमीन, सारी दुनिया को ले लो सुम मयून जी, उसको निजात दे दी जाए। कितना फयाज बन रहा है इंसान, सब ले ले अल्लाह मुझे छुड़वा दे। आज दुनिया में ही नहीं सबके लिए गुनाह करता। जवाब सुन लीजिए। कल्ला इन्नहा लसा नज़ात लिश्शवा, हरगिज नहीं होगा। यकीनन वो शोले वाली आग है जो मुंह और सर की खाल को खींच कर लाने वाली है। तदु मन अदबर व तवल्ला, वो हर उस शख्स को पुकारेगी जो पीछे हटता और मुंह मोड़ता है और जमा करके संभाल के रख लेता है। इन्नल इंसान खुलिका हलुआ इजा मस्सहु शर्रु जज़ुआ, बेशक इंसान बड़े कच्चे दिल वाला बनाया गया। जब इसे मुसीबत पहुंचती है तो हड़बड़ा उठता है और जब राहत मिलती है तो बुखल करने लगता है। अल्लाह में ऐसी खामियों वाला ना बना दे। अब आगे वो एक पैकेज जो मैंने शुरू तारुफ में भी दिया, जन्नत में कौन जाएंगे, उनकी खूबियां। इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीन हुम अला सलातिहिम दाइमून वल्लज़ीन फी अमवालिहिम हक्कुम मालूम, मगर वो नमाजी जो अपनी नमाजों पर हमेशा की करने वाले हैं, यानी सिर्फ रमजान के नमाजी नहीं है, सारा साल नमाज पढ़ते हैं, और जिनके मालों में मुकर्रा हिस्सा है, मांगने वालों का भी और सवाल से बचने वालों का भी, और जो इंसाफ के दिन पर यकीन रखते हैं और जो अपने रब के अजाब से डरते हैं। अल्लाह ये सारी खूबियाँ हमें अता फरमा दे। इन्ना अज़ाब रब्बिहिम गैरु मामून, ये बेशक इनके रब का अजाब बेखौफ होने की चीज़ नहीं है। आज इंसानियत बेखौफ है रब के अजाबों से भी, कहते जो होगा देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? आग में डाले जाएंगे तो देखा जाएगा, कब्र में सांप पिछू आएंगे तो देखा जाएगा। केयरलेस एटीट्यूड है आज जन्नत जहन्नम के जिक्र पे भी। वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, और जो लोग अपनी शर्मगाहों की हराम से हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़्वाजिहिम अव मा मलकत अयमानुहुम, हाँ इनकी बीवियों और लौंडियों के बारे में जिनके वो मालिक हैं, इन्हें कोई मलामत नहीं। अब जो कोई इसके अलावा राह ढूंढेगा तो ऐसे लोग हद से गुजर जाने वाले होंगे। और जो अपनी अमानतों का और अपने कौलो इकरार का पास रखते हैं, और जो अपनी गवाहियों पर सीधे और कायम रहते हैं, जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, उलाइका फी जन्नाते मुकरमून, यही लोग जन्नतों में इज्जत वाले होंगे। जन्नतों की खूबियाँ, नेमतों की खूबियाँ, और ये सब कुछ पढ़ते हुए कीमती नसीहत जहन में रखिएगा। नमाज पढ़ो ऐसे जैसे ये तुम्हारी आखिरी नमाज हो, रोज़ा ऐसे रखो जैसे ये तुम्हारा अलविदाई रोज़ा हो, सदका ऐसे दो जैसे ये तुम्हारा आखिरी सदका हो, कुरान ऐसे पढ़ो जैसे ये तुम्हारी आखिरी तिलावत हो। अल्लाह की कसम, हम अपनी ज़िंदगी की जमानत नहीं दे सकते और हमें यहाँ हमेशा रहने का कोई वादा नहीं दिया गया। हो सकता है कि तुम्हारी नज़र किसी को आखिरी बार देखे, शायद आज हम आखिरी बार देख रहे हो, कल से पहले हम में से कोई चला गया, फिर क्या होगा? और फिर कभी वापस ना लौट सके। बस नेकी में जल्दी करो और सच्ची तौबा कर लो, क्योंकि हम सब जाने वाले हैं और बाकी सिर्फ आमाल का असर रहेगा। जुदाई बहुत तकलीफ दह चीज़ होती है। इस साल के रमज़ान के अंदर जो मैंने एक पर्सनल फीलिंग ली वो क्या थी, बहुत से लोग बाहर के मुझे मिले और बहुत को जाता हुए भी देखा। मोस्टली जो उम्रे पे आते हैं लोग वो 10 दिन पे आते हैं ना, बाहर के दुनिया से जो आते हैं मोस्टली, तो वो एक वीकेंड से दूसरे वीकेंड के बीच में आते हैं क्योंकि उसी में छुट्टी ली होती है या कुछ, है ना, तो आने की खुशी है, फलां आ रहा है फलां आ रहा है फलां आ रहा है, और साथ ही जाने के तक, यानी मैंने अपने हाथों से कह सकते हैं कि इस चीज़ को पिछले दिनों में फील किया। ज़रा दिली ताल्लुक़ होता है, मोहब्बत होती है साथियों से, पूर्व होता है, पूरी दुनिया से लोग इधर उधर से आते हैं। खुशी ये है कि चले यहाँ मिल गया, अब उनके मुल्कों में जब कोई जाएंगे तो मिलेंगे या वो आएंगे तो मिलेंगे, लेकिन ये जो जाने के बाद हिरक लग जाता है ना, हाय कल इधर थे, आज चले गए, आज किधर हो गए। ये भी एक, मैं सोचती हूँ कि अल्लाह दिलों में मोहब्बत डालता है, और मैंने तो नबी सल्लम से मोहब्बत करना सीखा है। नफरतें तो मेरे नबी को किसी से भी नहीं थी। अल्लाह ताला हमारी सारी इबादत को कबूल कर लें। फमाल लजीना का फरूकी बला का मुख्तिन, बस कुफार को क्या हो गया है कि वो तेरी तरफ दौड़ते आते हैं, दाएं और बाएं से गिरोह के गिरोह। क्या इनमें से हर एक की तवक्को ये है कि वो नेमतों वाली जन्नत में दाखिल किया जाएगा, यानी खुशफहमियों की जन्नत? अमल है कोई नहीं और जन्नतों के ख्वाब, ऐसा हर किस न होगा। हमने इन्हें इस चीज से पैदा किया जिसे वो जानते हैं, बस मुझे कसम है मशरिक और मगरिबों के रब की। क्या इन्ना लकादिरून, यकीनन हम कादिर हैं। किस बात पे? नोट करिएगा, अला नुबद्दिल खैरा मिनहुम वमा नहनु बिमसबूकीन, इस पर के इनके इवज इनसे अच्छे लोग ले आए और हम आजिज नहीं। अल्लाह की कुदरत को महसूस कीजिए, बस तो इन्हें झगड़ता खेलता छोड़ दे, यहाँ तक कि अपने इस दिन से जा मिले जिसका इनसे वादा किया जाता है। कब्र से निकलने का मंजर देखिएगा तसव्वुर की निगाह में, यौम यखरुजून मिन अलअजदासि सिरान कअन्नहुम इला नुसुबि यूफिदून, जिस दिन ये कब्रों से दौड़ते हुए निकलेंगे गोया के वो किसी जगह की तरफ तेज तेज जा रहे हैं। इनकी आंखें झुकी हुई होंगी, इन पर जिल्लत छा रही होगी, और क्या कहा जाएगा? जालिकल यौमुल्लज़ी कानू यूअदून, ये है वो दिन जिसका इनसे वादा किया जाता था। ऐसे नहीं लगता टिड्डियां निकल रही हैं बारिश के बाद जमीन में से? ऐसे पूरी दुनिया में इंसान भर जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए तदब्बुर और अमल के नुक्ते लेते हैं। मुहज्जब इंसान जरूर अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा करता है, जबकि मोहसिन मुसलमान अपने रब के शुक्र के लिए नमाज कायम करता है। इत्मीनान नमाज का अहम रुकन है। दो सजदों के दरमियान कम अज कम 3 बार अल्लाहुम्मग़फिरली अल्लाहुम्मग़फिरली कहना सीखिए। हम तो जल्दी में भाग दौड़ करके नमाजें अदा कर देते हैं, सुकून से पढ़िए बल्कि रब्बिग फिरली वरहमनी वहदिनी वाफिनी वरजुकनी। बाज जगह वजबूरनी के लफ्ज भी हैं। कभी कुछ कर लीजिए, कभी कुछ मांग लीजिए, कभी कुछ। अपने जिम्मे कोई अमानत जो निभाई ना जा सकी हो, या ऐसा है जो पूरा ना किया जा सका हो, इसकी तकमील कीजिए, यानी अपने से किए हुए वादे याद कीजिए। क्या क्या वादे किए थे खुद से? ये हो गया तो ये करेंगे, ये हो गया तो वो करेंगे, और जायजा लीजिए कि क्या अपने से या दूसरों से किए हुए वादे पूरे किए। आगे जी कुरान से रहनुमाई, यौमे आखरत और इसके इंतहाई करीब होने का यकीन अहले ईमान को अमल की तरफ राग़िब करता है। तकलीफ में मायूस नहीं होना और आसाइश में बखीली नहीं करनी, हराम ख्वाहिशात में पड़ने से अपने नफ्स को महफूज रखना है। गौर व फिक्र, दूसरों की दी हुई तकलीफों पर सब्र करने का मतलब ये नहीं कि दावत देना तर्क कर दिया जाए, यानी दावत का काम होता ही रहेगा। रोज़े क़यामत अगर काफिर को इजाज़त मिल जाए तो अपनी जान बचाने के लिए अपने सबसे करीबी रिश्तों को फ़दिये में दे दे। बंदे के अंदर जिस कदर खशियत ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा इसके नेक अमल में इजाफा होगा। इमाम इब्न क़य्यिम का एक कॉल मैं कहीं पढ़ रही थी कि अगर मरने वाले को दोबारा दुनिया में ले जाकर कुछ मौका दिया जाए तो वो उस रमज़ान की ख्वाहिश करेगा जिसमें वो बढ़ चढ़ के नेकियां कर ले। और आपके मेरे पास अभी है, अभी रमज़ान की घड़ियां भी मौजूद हैं, अभी कुरान भी चल रहा है, तो इन दिनों की कदर करनी है। हर इंसान इरादे और अमल का हामिल है, अगर इसे नेक इरादे की तौफीक नहीं मिलती तो वो बुरे अमल में मुबतला हो जाता है। नाहक बातों में मशगूल रहना इल्म नाफे के बरक्स और लहो लाइब अमले साले के बरक्स है। नमाजी को नमाज दुनिया से लापरवाही पर उभारती है, ना वो इसकी तकलीफ़ों से घबराता है, ना इसकी भलाइयों में बुखल करता है। तो अल्लाह ताला में पक्का सच्चा नमाजी बना दे। अब सुनिए कहानी हजरत नूह की। बिलीव मी दावत इल्लाह के इस बारे में हजरत नूह की जगह अपना नाम लिख कर देखिएगा, अभी तर्जमे से समझ आ जाएगा आपको जो उनकी कौम ने बदतमीजियां और बद तहजीबियां उनके साथ की, कि उनको देखकर कानों में उंगलियां डाल देते थे, मुंह पे कपड़ा डालते थे, कहते थे तेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, तेरी बात नहीं सुनना चाहते। इसके बावजूद वो क्या चीज थी जिसने हजरत नूह को दावत इल्लाह पे खड़े रखा? हम थोड़े से बैड रिएक्शन पे, बैड रिस्पॉन्स पे अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं, तो इसका मतलब कि अभी दिल में वो ईमान नहीं जो के होने की जरूरत है। चलिए आइए देखते हैं 28 आयत है। पूरी सूरत में सिर्फ हजरत नूह की स्टोरी है, जैसे कि सूरत यूसुफ में हजरत यूसुफ की बात थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही अनंजिर कौमक मिन कबली यातियकुम अज़ाबुन अलीम। यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम को इनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डरा दीजिए और खबरदार कर दीजिए इससे पहले कि इनके पास दर्दनाक अजाब आ जाए। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूँ कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उसी से डरो और मेरा कहना मानो, तो वो खुद तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें एक वक्त मुकर्रर तक छोड़ देगा। यकीनन अल्लाह का वादा जब आ जाता है तो मुअख्खिर नहीं होता। लो कुन तुम तालमून, काश तुम्हें समझ होती। नबी की दावत कितनी बेलाग, कितनी खूबसूरत। क्या कहने लगे, ये करो वो करो, कौम ने जवाब ना दिया। अब अल्लाह के सामने शिकवा है, और शिकवे रब से नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। लेकिन शिकवों को शुक्र में बदल लें तो ये ज्यादा बेहतर है। काला रब्बी इन्नी दऊतु कौमी लैलन व नहारा फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फिरारा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी कौम को रात दिन तेरी तरफ बुलाया है। दावत इल्लाह का काम कीजिए रात दिन, मगर मेरे बुलाने से ये लोग और ज्यादा भागने लगे। रिएक्शन हो गया इनको, कुछ लोगों को आज भी रिएक्शन है इस दावत से। मैंने जब कभी इन्हें तेरी बख्शिश के लिए बुलाया, इन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल ली, इमेजिनेट कीजिए, और अपने कपड़ों को ओढ़ लिया और अड़ गए और फिर बहुत बड़ा तकबर किया। फिर मैंने इन्हें बावाज़े बुलंद बुलाया, सुम्मा इन्नी आलंतु लहुम वअसररतु लहुम इसरारा, और बेशक मैंने इनसे एलानिया भी कहा और चुपके चुपके भी, और मैंने कहा फकुल तस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहू काना गफ्फारा। अपने रब से अपने गुनाह बख्शवाओ और माफी मांगो, यकीनन वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान को खूब बरसता हुआ छोड़ देगा और तुम्हें खूब पै दर पे माल और औलाद में तरक्की देगा और तुम्हें बागात देगा और तुम्हारे लिए नहरें निकाल देगा। आयतें नोट कीजिए, इस्तग़फार के समरात सारे इकट्ठे इन आयात में आगे। तुम्हें क्या हो गया है, मालकुम ला तरजून लिल्लाहि वकारा, तुम्हें क्या हो गया कि तुम अल्लाह की बर्तरी का एक अकीदा नहीं रखते। वकद खलकुकुम अतवारा, हालांकि इसने तुम्हें तरह तरह से पैदा किया। तख्लीक पे गौर करवाया जा रहा है, अलम तरौ कैफ खलक अल्लाह सब असमावात इंतिबाका, क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह तला ने ऊपर तले किस तरह सात आसमान पैदा कर दिए और इनमें चांद को खूब जगमगाता बनाया और सूरज को रोशन चिराग बनाया और तुमको जमीन में एक खास अहतमाम से उगाया, फिर तुम्हें इसी में लौटा ले जाएगा और एक खास तरीके से फिर निकाल लेगा, और तुम्हारे लिए जमीन को अल्लाह ताला ने फर्श बना दिया ताकि तुम इसकी कुशादा राहों में चलो फिरो। قال نوح ربي انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे परवरदिगार, जरा इस तड़प को फील करें, ऐ मेरे परवरदिगार, इन लोगों ने तो मेरी नाफरमानी की और ऐसे लोगों की फरमा बरदारी की जिनके माल और औलाद ने इनको यकीनन नुकसान में ही बढ़ाया और इन लोगों ने बड़ा सख्त फरेब किया। वकालू ला तज़रुन्ना आलिहतकुम, और उन्होंने कहा कि हरगिज़ अपने माबूदों को ना छोड़ना, स्टबन, और ना बुद और सुआ और यगूस यऊक और नसर को छोड़ना, ये उनके पांच बुतों के नाम थे, उनके पंचतन पाक हैं ये, और उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह किया। इलाही तो इन जालिमों की गुमराही और बढ़ा, ये लोग बस अब अपने गुनाहों के डबो दिए गए और जहन्नुम में पहुंचा दिए गए और अल्लाह के सिवा अपना कोई मददगार उन्होंने नहीं पाया। वकाल नूह रब्बी ला तज़र अल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा। सारी हुज्जतें तमाम होने के बाद अब नूह अलैहिस्सलाम इनके लिए बददुआ करते हैं, और हजरत नूह ने कहा, मेरे पालने वाले, तू रूए जमीन पर किसी काफिर को रहने सहने वाला ना छोड़, अगर तू इन्हें छोड़ देगा तो यकीनन ये तेरे और बंदों को भी गुमराह कर देंगे और ये फाजरों और ढीठ कुफार ही को जन्म देंगे। रब्बे फिरली वली वालिदे वली मन दखल बैतिय मोमिनम वलिल मोमिनीन वल मोमिनात। ऐ मेरे परवरदिगार, तुम मुझे और मेरे माँ बाप और जो भी ईमानदार होकर मेरे घर में आए और तमाम मोमिन मर्दों और कुल ईमानदार औरतों को बख्श दे और कुफार को सिवाय बर्बादी के और किसी बात में न बढ़ाना। अल्लाह को इतनी कदर थी अपने सच्चे नबी की और दाई दीन की कि इस दुआ पे जमीन और आसमान से पानी के धारे खोल दिए। या अल्हम्दुलिल्लाह पारा भी निस्फ हुआ। बोली अल्हम्दुलिल्लाह अला नेमतिल कुरान। तदब्बुर और अमल करते हैं। दावत का बेहतरीन तरीका इख्तियार करना, यानी लोगों को अल्लाह से जोड़ना और इनके गुनाहों का एहसास दिलाना है। दीन के काम करते हुए लोगों की तादाद को नहीं देखना, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए अपना काम इस्तकामत से करते रहना। और ये दुआ आप और मैं भी अपनी दुआओं का हिस्सा बना लें। रब्बि फिरली वली वालिदैय वली मन दखल बैतिय मोमिनन वलिल मोमिनीन वल मोमिनात। और अपने सब प्यारों के लिए दुआ किया करें। रहनुमाई दाई की दावत का बुनियादी रुकन सब्र है। सब्र सब्र और सब्र। दुआ पलट कर वापस आती है, इसलिए तमाम मोमिनीन और मोमिनात के लिए की गई मसनून दुआएं किया कीजिए। यानी आप किसी के लिए दुआ करते हैं ना, तो वो दुआ पलट के आपके पास आ जाती है। कसरत इस्तगफार बारिश लाने वाली, फ़क्र को दूर करने वाली और बांझपन का इलाज करने वाली है। तो इनमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो इस्तगफार कीजिए। हसन बसरी ने एक मौके पर हर आने वाले को इस्तगफार का हुक्म दिया, तो पास बैठे शख्स ने कहा कि ये आपने क्या किया, सबको एक ही लाठी से आंक दिया। तो उन्होंने ये आयतें पढ़ी कि देखो ये आयतें क्या बता रही हैं कि इस्तगफार, और इसकी वजह भी समझ आ रही है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिमा कसबत अयदीकुम। हम पे अक्सर तकलीफें, मुसीबतें, बीमारियां, परेशानियां हमारे किसी गुनाह की वजह से आती हैं। हम इस्तगफार करेंगे, वो गुनाह माफ हो जाएगा, उजर खत्म, तो तकलीफ भी खत्म। अल्लाह करे इस सोच से हम हमेशा अपने आप को देखें। फिर गौर व फिक्र, तमाम रसूलों ने अपनी कौम को अल्लाह की इबादत और तकवा और अपनी इताअत का हुक्म दिया, क्योंकि दर हकीकत जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। अल्लाह तआला की इताअत इसकी नाफरमानी से इज्तना और इससे हया दिल में अल्लाह की तौकीर के बकदर होती है। यानी जितनी अल्लाह की इज्जत होगी उतना बंदा गुनाहों से रुकेगा और नेकियां करेगा। दुआ का अदब यह है कि इंसान पहले अपने लिए दुआ करे फिर दूसरों के लिए। नूह अलैहिस्सलाम ने कौम के लिए इसलिए बददुआ की कि इनका बाकी रहना अपने लिए और दूसरों के लिए महज फसाद का सबब था। तो जब कभी ऐसे हालात हों तो फिर ये बददुआएं नबियों ने की।